चार महीने बाद एयरपोर्ट का अराइवल हॉल। गेट से लोग निकल रहे थे, ट्रॉली खींचते हुए, गले मिलते हुए। अपने वतन, अपने अपनों के पास लौटने की खुशी उनके चेहरों पर दिख रही थी। उसी भीड़ में कायरव भी शामिल था। बैग कंधे पर टंगे, सूटकेस हाथ में, धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ रहा था। उसका चेहरा सर्द था, कोई मुस्कान नहीं, आंखें नीची, जैसे दुनिया से कट गया हो। चार महीने पहले जब गया था तब आंखों में सपने थे, ग्लोबल एक्सपेंशन, फैमिली के साथ खुशी। अब सिर्फ खालीपन है। कायरव बाहर निकला, मुंबई की गर्म हवा उसके चेहरे को छूकर गुजरी। पल भर को उसकी पलकें झुक गईं, जैसे उस हवा में किसी अपने की खुशबू महसूस कर रहा हो। लेकिन उसकी जिंदगी के जैसे ही ये हवा भी बिल्कुल नीरस हो गई थी, उसमें अजीब सी खलिश खुली थी। कायरव ने आंखें खोली, यहां भी वो उसकी मौजूदगी महसूस ना कर सका था। उसके चेहरे पर सर्द एक्सप्रेशन थे, आंखों में अजीब सा दर्द और सोनापन, होठों पर एक ऐसी चुप्पी जो महीनों से नहीं टूटी। कायरव बाहर निकला और अपने फैमिली, फ्रेंड्स या पैसेंजर को रिसीव करने आए लोगों की भीड़ में उसे एक जाना पहचाना सा चेहरा नजर आया, नितिन। सामने नितिन खड़ा था, जो कायरव को देखकर इतना खुश हुआ कि दौड़कर आकर उसके गले से लग गया। लेकिन कायरव के एक्सप्रेशन जरा भी नहीं बदले, लगा जैसे उसके दिल में अब कोई फीलिंग्स ही नहीं बची। उसने तो नितिन को पकड़ा तक नहीं था, जिसका एहसास होते ही नितिन की मुस्कुराहट भी कुछ फीकी पड़ गई। नितिन कायरव से दूर हो गया। कैसा है तू? जिंदा हूं, सांसें चल रही हैं, लेकिन कब तक चलेगी पता नहीं। कायरव का चेहरा अब भी सपाट था। नितिन की बची खुशी मुस्कुराहट भी गायब हो गई और चेहरे पर नाराजगी उभर आई। उसने गुस्से से कायरव के कंधे पर हाथ दे मारा। मार खाएगा अभी तो, ऐसे क्यों बोल रहा है? इतने टाइम बाद तो लौटा है और ऐसे बकवास बातें कर रहा है। पता भी है मैंने तुझे कितना मिस किया है। मार ही दे यार, कम से कम जिंदगी के इस बोझ से छुटकारा तो मिल जाएगा। अब ये बोझ मुझसे और उठाया नहीं जाता। इस जिंदगी में अब ऐसा कुछ नहीं बचा कि इसे जिया जा सके। कायरव के तड़पते दिल से आवाज आई थी, जो थक चुका था, उदास और मायूस था, शायद नाउमीद भी, लेकिन लब अब भी खामोश थे। वो बिना कुछ कहे जाकर कार में पैसेंजर सीट पर बैठ गया। नितिन भी उसके पीछे पीछे आया, सामान डिक्की में रखा और ड्राइविंग सीट संभालते हुए नजरें कायरव की तरफ घुमाई। तू टेंशन क्यों लेता है यार, भाभी मिल जाएंगी, तू वापस आ गया है, अब जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, कायरव के होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान उभरी, जिसके पीछे कितना दर्द छुपा था नितिन उसका अंदाजा तक नहीं लगा पाया। अगर ठीक ही होना होता तो अब तक हो चुका होता, या शायद कभी इतना खराब ही नहीं होता। अगर इनाया को वापस आना ही होता तो वो यूं मुझे बिना बताए अचानक मेरी लाइफ से गायब नहीं होती। चार महीने बीत गए, लेकिन अभी तक भी उसकी कोई खबर नहीं। वो कहाँ है, कैसी है, कुछ नहीं जानता मैं। मुझे तो ये तक नहीं पता कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों, ऐसी क्या मजबूरी थी उसकी कि वो ऐसे बिना बताए चली गई। इतने टाइम में मुझे एक बार कॉन्टैक्ट तक नहीं किया। तू भी ये पता नहीं लगा सका कि वो आखिर है कहाँ। वो तो यूं गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं, और तू कह रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। यार मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की भाभी को ढूंढने की, उनका नंबर ट्रेस करवाया, वो जहाँ जहाँ हो सकती थी हर जगह ढूंढा, उनके फ्रेंड के घर भी जाकर देखा, आसपास पूछताछ भी की, उनके फ्रेंड से भी पूछा, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। उनकी लास्ट लोकेशन भी वहीं की दिखा रहा है जहाँ उन्हें लास्ट टाइम देखा गया था। उसके बाद से उनका नंबर भी बंद है, बैंक से कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं हो रही कि उसकी हेल्प से हमें कुछ पता चले। मानव की क्या खबर है, उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं, जिस दिन से भाभी गायब है उसी दिन से वो भी गायब है। एक पड़ोसी ने बताया कि उसी दिन एक कार आई थी और मानव की माँ को भी ले गई। कोई नहीं जानता कि वो कार किसने भेजी थी, वो कहाँ गई, लेकिन उस दिन के बाद से ना मानव वापस आया और ना ही उसकी माँ। दोनों का नंबर उसी दिन से बंद आ रहा है और उसके अकाउंट से भी किसी तरह की कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। उसकी गर्लफ्रेंड को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैंने बताया था ना तुझे, लास्ट टाइम उसकी बात तभी हुई थी जब उसने पार्टी रखी थी, लेकिन मानव आया ही नहीं। भाभी तब उसके साथ ही थी और उनके जाने के बाद से उसकी भी दोनों से कोई बात नहीं हुई। वो तो मानव के घर रोज जाती हैं, उसका कैफे भी वहीं संभाल रही है। नितिन रुका और कुछ सोचते हुए बोला, यार मुझे लगता है कि भाभी और इन दोनों का एक ही दिन गायब होना कोई कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि ये सब इंटरलिंक्ड है। बस मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाभी ने ऐसा किया क्यों। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो मुझे बता सकती थी, तुझे कॉन्टैक्ट कर सकती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो अपने फ्रेंड के साथ कहीं चली गई और इतने टाइम में तुझे एक बार कॉन्टैक्ट तक नहीं किया? मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी, तू मुझे घर ड्रॉप कर दे। रायचंद मेंशन? नहीं, मेरे प्राइवेट विला। नितिन ने सिर हिला दिया। ऐसा नहीं था कि वो बोलना नहीं चाहता था, अभी भी उसके दिलो दिमाग में बहुत कुछ भरा था, लेकिन कायरव अभी अभी वापस आया था, पहले ही बहुत परेशान था। वो उसकी प्रॉब्लम और बढ़ाना नहीं चाहता था। उसके सर्द एक्सप्रेशन देखकर अभी उसकी कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, इसलिए वो चुप ही रहा। कार स्टार्ट करते हुए नितिन ने सरसरी नजर कायरव पर डाली, जो सीट से सिर टिकाए आंखें बंद किए बैठा था, लेकिन रिलैक्स नहीं लग रहा था। उसकी भौहें ऊपर को तनी थी, चेहरे पर सर्द एक्सप्रेशन मौजूद थे। कार अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, सड़कों पर चहल पहल थी। मुंबई की दौड़ भाग भरी जिंदगी में शाम गहराते ही सब अपने अपने घरों को लौटने लगे थे। कायरव भी अपने घर जा रहा था, वही घर जहां उसने नाया के साथ अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और हसीन पल बिताए थे, जहां जाते ही कभी उसकी सारी थकान उतर जाती थी, लेकिन आज दिल पर अजीब सा भार महसूस हो रहा था। 4 महीने बाद अपने घर लौट रहा था, लेकिन ना कोई खुशी थी और ना ही एक्साइटमेंट। कार में अजीब सा सन्नाटा पसरा था। कायरव की चुप्पी थी कि टूटने का नाम नहीं ले रही थी, और नितिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, बस बीच बीच में परेशान निगाहों से उसे देख लेता। कार कायरव के विला के बाहर रुकी। नितिन ने सिर घुमाया, होंठ खुले, लेकिन अगले ही पल खसमसा कर वापस बंद हो गए। उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। कायरव आंखें खोल चुका था और अब सीट बेल्ट खोल रहा था। मेरा लगेज निकाल दे और घर जा, कल ऑफिस में मुलाकात होगी, कायरव ने इतना कहा और बाहर निकल गया। नितिन फिर कुछ नहीं कह सका, क्योंकि जब तक वो बाहर आया कायरव अंदर जा चुका था और जाते जाते गार्ड को लगेज अंदर लाने का ऑर्डर भी दे चुका था। नितिन ने कायरव का सामान बाहर निकाला और गार्ड उसे लेकर अंदर चला गया। पता नहीं इसकी ज़िंदगी में कब खुशियां वापस आएंगी। भाभी के आने के बाद मुझे लगा था कि अब फाइनली इसे इसके हिस्से का सुकून और प्यार मिल जाएगा, लेकिन वो खुद पता नहीं कहाँ गायब हो गई हैं। मुझसे तो अब कायरव की ये हालत देखी नहीं जाती। मेरी तो बप्पा से बस यही प्रार्थना है कि भाभी जहाँ भी हैं उन्हें जल्दी से जल्दी कायरव की लाइफ में वापस भेज दें। नितिन ने परेशान निगाहों से घर के गेट को देखा, जहाँ से कुछ मिनट पहले कायरव गया था, फिर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की और कार लेकर वहाँ से निकल गया। गुड इवनिंग सर, पानी या कॉफ़ी कुछ लेकर आऊँ मैं आपके लिए? कायरव का अंदर आते ही सामना आशा से हो गया। वो उसके सामने सिर झुकाई खड़ी थी। कायरव ने सरसरी नज़र उस पर डाली और भावहीन सा बोला, अभी ज़रूरत नहीं है, जब होगी मैं खुद बोल दूंगा। इस वक्त मैं अकेला रहना चाहता हूँ, किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे। गॉट इट, कायरव ने कड़क अंदाज में ऑर्डर दिया। आशा ने तुरंत ही सिर हिला दिया। कायरव लंबे लंबे ढक भरते हुए वहां से चला गया।
कायरव ने जैसे ही अपने बेडरूम में कदम रखे, इनाया के साथ वहां गुजारे सभी पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। उसके चेहरे पर अजीब सा दर्द उभा, आंखों में शिकायत, लेकिन वो अब भी खामोश था। इनाया की बातें, उसका प्यार, वो हसीन पल, कायरव उन्हीं सब में खोया गेट पर ही खड़ा था जब पीछे से आशा की आवाज आई। भैया, कायरव चौंकते हुए उन यादों से बाहर आया। उसकी भौहें खतरनाक अंदाज में सिकुड़ गईं, जबड़े भींचते हुए वो पलटा। कहा था ना मैंने कि अभी मैं किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता, फिर क्यों आई तुम इस वक्त यहां? कायरव का गुस्सा देखकर आशा डर गई और सहमी हुई सी धीमी आवाज में बोली, मैं तो आपको बस ये देने आई थी। डर इतना था कि उसकी आवाज लड़खड़ा गई। उसने अपने दोनों हाथ उसके तरफ बढ़ा दिए। कायरव की नज़र जैसे ही उसके हाथ पर पड़ी, उसके एक्सप्रेशन बदल गए और सवालिया निगाहें आशा के चेहरे की तरफ उठ गईं। टू बी कंटिन्यूड।